आपने कहा कि गोपियों की माफ के एक प्रकार से हम लोगों की स्थिति कैसे हो, और गोपियों की जो प्रोग्राम टाइम टेबल किस प्रकार से थे, तो वास्तव में तो गोपियां ही जाने कि किस प्रकार उनमें का समय लगता था, किंतु आपके कहने के अनुसार और शास्त्र को देखने से ऐसा मालूम देता है कि गोपियां अपने क्षण मात्र के समय को भी कभी बर्बाद नहीं करती थी, और मैं अपने निकम्मी रहती थी, हर समय अपने घर का काम करती थी। तो इस बात पर ध्यान दे करके हम लोगों को कभी निकम्मा नहीं रहना चाहिए, और अपना जो मनुष्य जीवन है उसको सफल बनाना चाहिए। मनुष्य जीवन का समय बहुत ही समझो कि मूल्यवान है, या यूं कहो कि अमोलक है। ऐसे मनुष्य शरीर को पाकर करके और हमारा सारा समय एक प्रकार से काम में जाना चाहिए, और वह काम उच्च से उच्च कोटि का होना चाहिए। कोई भी मनुष्य जीवन को पाकर के क्षण मात्र भी अपने व्यस्त बिताता है तो समझो कि उसकी मूर्खता है। ख्याल करना चाहिए, वहाँ भागवत के दसवें स्कंध में बतलाया है कि गोपियां जो है गा दूती हुई और दही बिलोती हुई और घर के माँ झाड़ू देते समय के बीच के माँ और घर लीपने के समय में और उगली के बीच के माँ और धान आदि कूटने के समय के माँ और बालकों को झुलाने के समय में और खिलाने के समय के माँ, हर समय के बीच के माँ समझो अपने भगवान के नाम और गुणों का प्रेम से कीर्तन किया करती थी और उनका मन भगवान में बसता था, यानी भगवान के स्वरूप का चिंतन और भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन उनके द्वारा निरंतर होया करता था बड़े प्रेम से। उसी प्रकार से थी हम लोगों को भी करना चाहिए। जो भाई जो कुछ काम करता है अपने वर्ण आश्रम के अनुसार जो कुछ करता है, इसी प्रकार की दिलचस्पी से उनको करना चाहिए। स्त्रियां जो है वे जो कुछ अपने गृह कार्य करती है ठीक उसी प्रकार से उन्होंने करना चाहिए। इसे ख्याल करना चाहिए कि समझो कि गाय को धोनो और फिर दही बिलोनो, और कच्चा घर था उनका सो घर को लेपनो। इससे मालूम होता है कि आजकल की वर्तमान की स्त्रियों की अपेक्षा उनकी जमावारी के माँ बहुत अधिक मात्रा में काम हो। तो इसी प्रकार से थी अपने घर के माँ जो काम है, और भी एक प्रकार से समझो कि विरुद्ध से काम है ने खोज लेवे, किंतु क्षण मात्र के लिए भी स्त्री निकम्मी नहीं रहे और कुछ काम नहीं होए। तो जिन पुस्तकों में भगवान की भक्ति है और संसार से वैराग्य भगवान में प्रेम, ऐसी पुस्तकों का अनुशीलन करना चाहिए। इसी प्रकार से पुरुषों को भी समझो कि अपने ऊपर इतना काम का भार रखना चाहिए जो कि क्षण मात्र उसको अवकाश नहीं मिले, और वो काम जो है सो भगवान का ही समझना चाहिए, कोई अपना किसी काम नहीं। जो भी किसी हमारे द्वारा क्रिया हुए वो भगवान के लिए करनी चाहिए और दूसरे काम के लिए नहीं। काम निरंतर करना जब तक हम एक प्रकार से अपने जागते रहें, जो 18 घंटा जागृत अवस्था में जो काम करेंगे 6 घंटा सपने में भी वही काम अपने आप से आप होगा। ऐसा अपना स्वभाव बना लेना चाहिए कि हमारे द्वारा भगवान का काम हर वक्त अपने आप ही होता रहे और वो काम का स्वरूप भी सबसे बढ़कर होए। भगवान ने गीता में कहा है कि माम ही पार्थ विवासित ये पिशु पाप योनि है स्त्रियो वैश्वा तथा शूद्रास्ते प्रांगतिम। हे पार्थ, मेरी शरण होकर के स्त्री वैश्य शूद्र और चाहे पापियों ने भी क्यों नहीं हो, वे भी परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से भगवान की शरण होकर के हमको सब समय में काम करना चाहिए। ये जो श्लोक बताया ये गीता की 9वीं अध्याय का 32 का श्लोक है। इसी बात को आपने रख कर करके और भगवान गीता की 18वें अध्याय के 56 के श्लोक में कहते हैं, सर्व कर्मान अपि सदा कुर्वाणो निर्वास्त्रिय मत प्रसादा द्वापनोति शाश्वतं पदमध्यम। मेरी शरण होकर के सदा सर्वदा कर्म करता हुआ पुरुष है, मेरी कृपा से शाश्वत अविनाशी पद को प्राप्त हो जाता है। शाश्वत अविनाशी पद कहो चाहे परम पद कहो, परमात्मा की प्राप्ति कहो, एक ही बात है। सदा सर्वदा कर्म करता हुआ भी उसके पूर्व के बीच के मां समझो कि एकांत में वास करके और संसार के विषय भोगों का स्वरूप से त्याग करके और उनके मां जो राग द्वेष है उनका त्याग करके नित्य निरंतर भैराग का आश्रय किए हुए और ध्यान करने की बात कही है। यहाँ ये बात बतलाई जाती है कि एकांत में बैठ कर करके और ध्यान करने से तेरी जो लाभ होता है वही लाभ जो है सो भगवान कहते हैं कि सदा सर्वदा कर्म करते हुए भी आपने हो सकता है। तो सदा सर्वदा कर्म करते हुए वे लाभ हो सकता है भगवान किस आधार पर कहते हैं? भगवान कहते हैं कि मेरी कृपा से वे शाश्वत अविनाशी पद को प्राप्त हो जाता है। कौन हो जाता है? कि जो मेरी शरण लिए हुए जो सदा सर्वदा काम करता है, कि जैसे गोपियां भगवान को आश्रय लिए हुए और सदा सर्वदा काम करती थी। आश्रय क्या? कि भगवान के नाम और गुणा को वाणी से कीर्तन कर लो, जो वाणी के लिए भगवान को आश्रय है और मन से भगवान को चिंतन कर लो यानी ध्यान कर लो, यो मन को ऐसा आश्रय है और शरीर से ठीक काम कर लो, क्योंकि गोपियां जो है अपनो तन मन धन और शरीर सब कुछ भगवान के अर्पण कर चुकी थी। इसी प्रकार से थी हम लोगों को उचित है कि जो भी कुछ हमारे अधिकार के माँ है उन सब को हम भगवान के अर्पण कर दे और अपने आप को भी, जैसे राजा बलि ने अपने आप को और अपने सर्वस्व जो कुछ है भगवान के समर्पण कर दिया था, इसी प्रकार से थी भगवान के सब कुछ समर्पण कर देने और भगवान के सब पदार्थ हैं ही, किंतु एक प्रकार से समझो कि भगवान ने जैसे हमारे को गीता में बतलाया है उसी प्रकार से गीता अध्याय 18 श्लोक 46 के मां भगवान कहते हैं कि यत प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततम स्वक्रमणां तमेवच सिद्धिं विन्दति मानवः। जिस परमात्मा से यह संसार उत्पन्न हुई है और जो परमात्मा इस संसार में व्यापक है उस परमात्मा को अपने अपने कर्मों के द्वारा पूज कर करके मनुष्य सिद्धि को यानी परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उसी का नाम परम सिद्धि है और उसी का नाम परमात्मा की प्राप्ति है। क्यों? जो ऐसा परमात्मा का भक्त है उसका फल भी परमात्मा की प्राप्ति। तो इसमें ये बात बतलाई कि जिससे यह संसार उत्पन्न हुई है, उत्पन्न हुई कहने का अभिप्राय यह है कि यह संसार ऐसो भगवान की है। जब भगवान से उत्पन्न हुई है तो यह संसार भगवान की है, भगवान ही इसके उपादान कारण है और भगवान ही इसके निमित्त कारण है। उपादान कारण उसको कहते हैं कि जैसे एक घड़ा है तो उसका उपादान कारण मिट्टी है और निमित्त कारण कुम्हार है। तो इस संसार रूपी ब्रह्मांड के रचने वाले भी भगवान और इसके माँ समझो कि मिट्टी के स्थान में भी भगवान। तो भगवान इस संसार के माँ समझो कि पहले से प्रवेश होकर इस संसार की रचना की है। जैसे कोई मनुष्य स्वप्न के बीच के माँ संसार देखता है तो स्वप्न की संसार का समझो कि उपादान कारण भी वह पुरुष है जिसको स्वप्न आता है और निमित्त कारण भी वह पुरुष ही है। इसी प्रकार से थी समझो कि इस संसार के रचने वाले भी भगवान और संसार के माँ प्रवेश होकर के भगवान पहला से स्थित है। जीव जो है ये तो पराधीन है, इसलिए स्वप्न इसको जो आता है इसे को एक प्रकार से माने इसकी स्वतंत्रता नहीं देखते हैं और परमात्मा स्वतंत्र है। जैसे कोई मनुष्य जागृत अवस्था में अपने मन में कोई संकल्प करे और उस संकल्प के बीच में जो पदार्थ है वह फिर भी उसे के कुछ आधीन है, और परमात्मा तो सर्वथा स्वाधीन है, और हम लोगों का जो संकल्प है वो तो हमारे लिए एक प्रकार से सत्सा प्रतीत होता है, सत तो नहीं है, दूसरों को तो पता ही नहीं है, किंतु भगवान का संकल्प सो सत्य होने के कारण से थी, संकल्प होते हुए भी हमारे लिए वो एक चीज सब है सो प्रत्यक्ष की भांति प्रतीत होती है। तो परमात्मा जो है इस संसार को रच कर करके और उसमें प्रवेश किए हैं, तो यत प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततम, यत प्रवृत्ति भूतानां से ये बात बतला की जिससे यह संसार उत्पन्न हुई, तो यह संसार भगवान से उत्पन्न हुई और भगवान ही इसके महाव्यापक हैं, ऐसा समझ करके अपने 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 कर्मों के द्वारा उनकी सेवा करनी चाहिए, ये भाग इसका है। तो इस कहने का अभिप्राय यह है कि सब कुछ ये जो पदार्थ हैं सो भगवान के हैं, क्योंकि भगवान ने रचे हैं, भगवान का स्वरूप मान लो, ये भगवान इसके मां व्यापक मान लो, समझो किसी भी प्रकार से यह बात समझ में आ जावे, तो भगवान की सब संसार है ऐसा मानने से पद पद में भगवान की समृद्धि संभव है, क्योंकि भगवान के साथ में इसका संबंध मान लिया जावे कि ये सब पदार्थ भगवान के हैं, तो भी भगवान की समृद्धि हमारे को पद पद में होनी चाहिए। जैसे कोई भी एक समझो कि धनी आदमी है और हम शहर के वहां घूम रहे हैं, हमारे साथ में एक परिचय देने वाला व्यक्ति है, वह कहता है कि यह हेली सेठ की, ये दुकान सेठ की, ये समझो कि कोठी सेठ की, जहाँ जावे उस जगह के वहां उस सेठ की चीज बतलाई जावे, तो उस चीजों को देख देख के उस सेठ का नाम और रूप ये स्वाभाविक ही एक समृद्धि में आ जाता है। तो इसी प्रकार से थी ये सभी संसार भगवान की है, इस नाते से हमारे को पद पद के मां भगवान की समृद्धि होनी चाहिए। उसकी अपेक्षा इसमें और विशेषता है, ये विशेषता है सेठ जो है वो उसके मां व्यापक नहीं है, सेठ कहीं रहता है और उसके पदार्थ मकान कहीं रहते हैं, और भगवान तो स्वयं उसके मां समझो कि व्यापक हैं, इसलिए प्रत्येक पदार्थ के अंदर भगवान का दर्शन करना चाहिए, माने भगवान को देखना चाहिए, जहाँ हमारे नेत्र जाए वहाँ भगवान का मन से दर्शन करना चाहिए, और जहाँ हमारा मन जावे वहाँ में भगवान को देखना चाहिए। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्यां न प्रणश्यामि सच मे न प्रणश्यति। जो पुरुष भगवान कहते हैं मुझ परमात्मा को सर्वत्र सब मैं देखता है और सब को मुझ में देखता है, उससे मैं कभी अपने अलग नहीं होता, वे मेरे से कभी अलग नहीं होता, अर्थात मेरी दृष्टि से वह समझो कि ओजन नहीं होता, उसकी दृष्टि से मैं ओजन नहीं होता, वो मुझको एक सब जगह देखता है, सब मैं देखता है। जैसे आकाश में बादल है तो बादलों के अणु अणु में आकाश है, कोई ऐसा एक भी अणु नहीं या आकाश नहीं हो, और बादलों का समूह का समूह उसे आकाश के किसी एक अंश में है, इसी प्रकार से ये सारा ब्रह्मांड उस परमात्मा के किसी एक अंश में है, और परमात्मा इसके अणु अणु के वहां आकाश की जो है सो व्यापक है। इस प्रकार से थी आपने परमात्मा का दर्शन करना चाहिए, जो समझो कि सबको परमात्मा में देखता है और सब में उसे परमात्मा को देखता है, बना उससे भगवान उज्जवल कैसे हो सकते हैं। इसलिए एक प्रकार से भगवान ने ये ठीक ही बात कही है, इस प्रकार से होते होते वो तन्मय हो जाता है, जब आगे जाकर उसको अपने आपका भी ज्ञान नहीं रहता तो उस परमात्मा के स्वरूप में उसकी स्थिति भक्ति के मार्ग के बीच के मां अनन्य भाव से हो जाती है, यानी उस परमात्मा में एकदम वो रम जाता है, परमात्मा में वो तन्मय हो जाता है, और ज्ञान के मार्ग में वो परमात्मा का स्वरूप ही बन जाता है। तो यहाँ भक्ति का प्रकरण है, इसलिए सर्वभूत स्थित मांग भजती एकत्रित सर्वथा वर्तमान होती सहयोगी मई वर्तते। सर्व भूतों में मैं जो स्थित हूँ, भगवान कहते हैं कि सारे भूतों के बीच के माँ मैं जो एक रूप से स्थित हूँ, ऐसे मुझ परमात्मा में जो एक ही भाव से स्थित है, माने एक की माफक स्थित है, माने एकदम मेरे में ऐसी एकता हो गई है कि मेरे स्वा उसको कोई भी बात का ज्ञान नहीं है। ऐसा पुरुष लोक दृष्टि में संसार में बरतता हुआ भी वास्तव में वो मुझ परमात्मा में ही बरतता है। इस प्रकार से भगवान ने गीता की 6 अध्याय के 30 और 31 के श्लोक में ये 2 श्लोकों में ये बात कही है। इसको ख्याल में रखता हुआ और संसार के माँ जो आदमी विचरण करता है वो कभी भगवान को भूल ही नहीं सकता। उसकी दृष्टि के बीच के माँ सदा सर्वदा भगवान अपने सो याद रहते हैं कि जैसे गोपियों के अपने याद रहते थे। गोपियां जो है समझो कि अपना इष्ट देव भगवान जो कृष्ण है उसको इस प्रकार से देखा करती थी। प्रत्येक पदार्थ के माँ, घास के माँ और घास की डाल में पत्ते पत्ते के बीच के माँ भगवान का वे दर्शन किया करती थी भगवान श्री कृष्ण जी का। इसी प्रकार से थी हम लोगों को अपने इष्ट देव के स्वरूप का दर्शन करना चाहिए। वह भगवान का स्वरूप चाहे सगुण साकार हो चाहे सगुण निराकार हो, कोई सा भी क्यों नहीं हो, किंतु साकार निराकार में कोई भेद नहीं है, वो एक ही चीज है। संसार में जैसे समझो कि अग्नि दियाशाही के मन निराकार है और कृष्ण से वो साकार होकर दिखने लग जाती है। हम लोगों के शरीर में भी अग्नि है किंतु निराकार रूप से है, इसलिए वो दिखती नहीं है। और यदि अग्नि न हो तो हम जो भोजन करते हैं वो हजम कैसे हो। इसी प्रकार से भगवान हम लोगों के सबके हृदय के बीच के माँ, सारे शरीर के बीच के माँ अग्नि से भी बढ़ करके व्यापक है। संसार में जितने जो पदार्थ हैं उन सब में भगवान व्यापक है। अग्नि जो है अपने आप में और अपने कार्य जल और पृथ्वी में ही व्यापक है, अपने कारण के बीच के माँ नहीं। किंतु भगवान तो सब में व्यापक है, क्यों? भगवान सबके कारण है, इसलिए भगवान को छोड़कर कोई पदार्थ है ही नहीं। जब ये बात समझ में आ जाती है तो भगवान उसकी दृष्टि से कभी ओझल हो ही नहीं सकते हैं। तो इस बात को अच्छी तरह से समझ कर करके अरे मनुष्य काम करता है। इस भाव को लेकर के हम जो कुछ करते हैं भगवान के लिए करते हैं और भगवान के हुक्म के अनुसार ही करते हैं और भगवान को देखते हुए करते हैं, क्यों? भगवान सबके वहां विराजमान हो रहे हैं। इस प्रकार से समझ कर करके और जो काम करता है तो शीघ्र ही उस परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण Yeah. பூர்ணம் பூர்ணம் அசாரம் சாந்தம் கணம் அச்சரணம் துருவம் நித்யம் புத்தஸ்வரூபம் ஞானஸ்வரூபம் ஆனந்தியானம் ஆனந்தியம் பிரகார் சித்தி அப்புறம் அபியாஸ் கரத்தே கரத்தே ஒரு ஃபிர் ஆகே ஜா கர் கரக்கே एकदम तन में हो गया। पहले तो कर्म करने के समय में इस भाव से किया जाता है भगवत अर्थ बुद्धि से कि मैं भगवान के लिए ही कर्म करता हूँ, भगवान के हुक्म के अनुसार। जैसे गीता में भगवान ने हुक्म दिया है उसके अनुसार मैं कर्म करता हूँ, भगवान के लिए भगवान को देखता हुआ। माने उस प्रथम तो उसकी सारी क्रिया साधक की भगवान के लिए ही होती है, भगवान के उद्देश्य से ही वो करता है। और फिर आगे जाकर भगवत अर्थ के स्थान में भगवत अर्पण बुद्धि हो जाती है। भगवत अर्पण बुद्धि कैसे, यत करोषि यदर्शनासि यज्जुहोषि ददास यत यत तपस्य कौन्तेय तत्कुर समर्पण सुवासु फले रे मोक्ष से कर्म बंध नहीं संन्यास योग युक्त आत्मा विमुक्तो माम उपैषसि। भगवान गीता की 9वीं अध्याय के 27 और 28 के श्लोक में कहते हैं कि अर्जुन तू जो भी कुछ करता है, जो भी कुछ करता है भगवान का जो भक्त होता है उसके द्वारा जो कुछ कर्म होते हैं शास्त्र विहित होते हैं, भगवान की आज्ञा के अनुसार ही जैसे साधक करता है तो फिर आगे जाकर के भगवान के हुक्म की माफक स्वाभाविक उसे होने लग जाते हैं, शास्त्र विपरीत नहीं। तो यत करोषि के बीच में कि जो भी किछु एक प्रकार से तुम शास्त्र विहित कर्मों का आचरण करता है, जो किछु भोजन करता है, भोजन भी वह पुरुष समझो कि शास्त्र के अनुकूल ही करता है, तो सात्विक भोजन है, पवित्र भोजन है, भगवान की सारी क्रिया पवित्र होती है और उसका खान पान सब पवित्र होता है। तो यत करोसी यत दर्शनासी जो कुछ तू करता है और जो कुछ तू खाता है और जो कुछ तू यज्ञ करता है, दान देता है, तप करता है, वह सब तू मेरे समर्पण कर दे। भगवान कहते हैं कि इस प्रकार से मेरे समर्पण करने पर शुभ और अशुभ कर्मों के फल के बंधन से तो मुक्त हो जाएगा और कर्मों के फल से मुक्त हुआ फिर तो मुझ परमात्मा को ये सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार से अर्जुन को विशेष भगवान आज्ञा दे रहे हैं। उस बात को समझ करके हम लोगों को वो बात अपने लिए समझ लेनी चाहिए। तो फिर आगे जा करके उस पुरुष के द्वारा जो कुछ क्रिया होती है भगवान के लिए होती है, फिर उसमें जो कर्तापने का जो अभिमान है वह भी नहीं रहता कि मैं करता हूँ। वो ये समझता है कि मेरे द्वारा होने वाली सारी क्रिया भगवान ही करवाते हैं और भगवान का ही हाथ है। जब भगवान का हाथ है तो भगवान के सिद्धांत के विरुद्ध तो कोई चीज हमारे से होने की सपने में भी संभावना नहीं। तो फिर आगे जाकर स्वतः सिद्ध उससे सब काम होने लग जाते हैं। उसके लिए फिर भगवान कहते हैं ख्याल करना चाहिए कि मच्चिता मदगत प्राण बोधयंत परस्परम कथियंत मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन माम उपयान्ति ते। मच्चिता जिसे कहा मन मनस कहा भागवत के बीच में वही भाव यहाँ है मच्चिता कि जिनका मेरे में निरंतर चित्त है उनको कहते हैं मच्चिता मदगत प्राण, जिनका जीवन मेरे लिए उसको मदगत प्राण तथा एक प्रकार से मदगत प्राण जैसे मच्छी जो है उसका जलगत प्राण है, बिना जल के वो जी नहीं सकती। इस प्रकार से थी भगवान का कहना यह कि जो मेरे वियोग में जी नहीं सके, मेरे बिना समझो कि है नहीं सके, वो मदगत प्राण। तो दोनों बात का समझो कि आप आखिरी अर्थ एक है, इसलिए जैसे ही समझ लो मेरे लिए जो जीता है, मेरे लिए जिनका जीवन है और मेरे मदगति जिनके प्राण हो, एक प्रकार से मच्चिता मदगत प्राण और बोध यंत्र है परस्परम। मेरे गुण प्रभाव और तत्व रहस्य की जो बातें हैं, इन बातों को एक दूसरे के लिए जो जनाता रहता है वो बोध यंत्र है परस्परम। कथियंत से मांग नित्यम, और मेरे भक्तों में मेरे गुण प्रभाव तत्व रहस्य की बातों को और मेरी भक्ति के विषय की बातों को जो सदा कथन करता रहता है, तुषंती च रमंती च, इस प्रकार मेरे में समझो कि रमन करता है और संतोष का अनुभव करता है, यानी एक आनंद का अनुभव करता है, उसके लिए भगवान कहते हैं कि तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम्। उन नित्य निरंतर मुझ परमात्मा में लगे हुए और प्रेम से भजने वाले भक्तों को मैं वह बुद्धि योग देता हूँ, यानी भगवान अपने विषय का जो यथार्थ ज्ञान है उसके लिए कहते हैं, मैं उसको वह बुद्धि योग देता हूँ कि जिससे उसको मेरी प्राप्ति हो जाती है। ये जो है आगे जाकर उसका ऐसा भाव हो जाता है, तो काम करने के समय और काम नहीं करने के समय, ये जो बात बतलाई, ये काम नहीं करने के समय अधिकांश से, और वो पहली जो बात बतलाई वो काम करने के समय, तो दोनों समय के बीच के ना उनका एक सा ही भाव रहता है। उनके द्वारा होने वाली क्रिया जो है एक प्रकार से थी सब भगवान के लिए होती है, फिर उसको भगवान की प्राप्ति हो जाती है। वो भगवान की प्राप्ति होने के बाद भी उसकी क्रिया स्वाभाविक ही सब भगवान के लिए होया करती है, तो गोपियां की सारी क्रिया जो है सो भगवान के लिए होया करती थी। वे भगवान के साकार निराकार सगुण निर्गुण तत्व को जानती थी, उस तत्व को जान करके ही वो भगवान की भक्ति किया करती थी। तो इसी प्रकार से थी हम लोगों को भी करना चाहिए। जब भगवान की प्राप्ति हो जाती है तो उस समय के बीच के वहाँ उसको बहुत भारी आश्चर्य सा होता है कि देखो काम तो मैं और काम भगवान। उसके बाद में उसको इतना आनंद होता है कि उसको अपने आप का होश सो नहीं रहता, भगवान का ही ज्ञान रहता है। इस प्रकार से भगवान के उस साक्षात दर्शन से थी भगवान के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान हो जाता है कि भगवान किस प्रकार के हैं, कैसे हैं, ज्यों का त्यों भगवान के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। फिर उसके द्वारा जो चेष्टा होती है होश आने पर, प्रथम तो उसको अपने आप का ही होश नहीं रहता, जब उसके बाद में होश आता है तो ये समझता है वहाँ कि भगवान और मैं और भगवान की भक्ति ये स्वरूप से तीन होता हुआ भी एक ही है। भक्त भगवान और भक्ति सब संजो की एक ही धातु है, नाम और रूप अलग अलग है, वस्तु स्थिति विचारने से एक ही चीज है। जैसे एक ही सोने के बहुत से आभूषण हुए तो उनके नाम अलग अलग हैं, रूप अलग अलग हैं, किंतु सोने की दृष्टि से देखा जावे तो एक ही है। इसी प्रकार से प्रेम जो है वो साक्षात परमात्मा को स्वरूप ही है, और परमात्मा को स्वरूप भूत जो प्रेम है वो चेतन है, तो प्रेम ही प्रेम मास्पद के और प्रेम के और प्रेमी के रूप में तीन रूप में स्वयं प्रेम ही प्रकट होता है, और वो प्रेम है वो साक्षात परमात्मा है। भक्त की दृष्टि से थी तो भगवान प्रेमास्पद और भक्त प्रेमी, और भगवान की दृष्टि से भगवान तो प्रेमी और भगत प्रेमास्पद और प्रेम उनका संबंध, तो समझो कि प्रेम का संबंध परस्पर ऐसा एक अद्भुत अलौकिक हो जाता है कि भक्त की सारी चेष्टा भगवान के लिए होती है और भगवान की सारी चेष्टा भक्त के लिए। तो इस प्रकार की उनकी दोनों की चेष्टा जो है वो लीला रूप है। भगवान की सारी चेष्टा भक्त के लिए एक प्रकार से, भक्त की सारी चेष्टा भगवान के लिए। भक्त तो भगवान को आह्लादित करने के लिए चेष्टा करता है और भगवान भक्त को आह्लादित करने के लिए चेष्टा क्या करते हैं। जैसे सब संसार को आह्लादित करने वाले भगवान, सबको आमोद प्रमोद देने वाले भगवान, उस भगवान को समझो कि राधिका जी जो है सो आह्लादित करती रहती है। राधिका जी की सारी चेष्टा भगवान के लिए है। आह्लादिता माने जो जिसको हम राधिका जी को अलादिनी शक्ति कहते हैं, वो अलादिनी शक्ति ही भगवान को अलादित करती रहती है। जो भगवान से एक प्रकार से भिन्न भी है और अभिन्न भी है। वास्तव में तो समझो कि एक रूप से हम ऐसा मान लेवे कि शक्ति और शक्तिमान में कोई भेद नहीं है, तब एक ही चीज है। भगवान की शक्ति यूं जब माने तो उसको चाहे अलग मान लो, तो वास्तव के भीतर के बीच के मां दोनों मिलकर के एक ही चीज है। इसी प्रकार से भक्त प्राप्ति होने के बाद जब एक प्रकार से थी अपने को अपने अलादिनी शक्ति की माफके राधिका जी की माफके मान कर करके और भगवान इनके मन की माफके एक प्रकार से नाचता रहता है। जैसे कठपुतली जो है उसको सूत्रधार जो नचाता है जी वो नाचती है। वास्तव में कठपुतली नाच रही है ये कथन मात्र है, सब काम तो सूत्रधार के ही ऊपर निर्भर है। इसी प्रकार से थी भगवान कि वो कठपुतली बन जाता है, जो भगवान नचावे जो ही सो नाचे।